أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتم الحضرات. آج بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ایک پرانے ساتھی جو یہاں غالباً 1987 سے تشریف لایا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیجیے. مولانا روم نے ایک بہت کمال کا نقطہ پیدا کیا کہ انسان عالم بالا سے اس عالم مادہ میں اتارا جاتا ہے, بلندی سے پستی کی طرف, لیکن پھر پستی سے وہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان کی اصل میں بلندی ہے, پستی نہیں ہے. کیونکہ روحانیت میں انسان کی اصل صرف اس کی روح کو گنا جاتا ہے. جسم ایک کیریئر کے طور پہ یوز ہوتا ہے اس روح کا. جسم کو صرف اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ انسانی روح کے کیریئر کا کام کرتی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو, مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خاکی پتلا کہتا ہے, اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو کنکتی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا. لیکن مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ بے شک اس کا جسم مٹی سے تیار ہوا, لیکن جو اصل ہے وہ بلندی ہے. اس کی روح بلندی سے اس دنیا میں آئی ہے, اپنا وقت پورا کر کے پھر بلندی کی طرف چلی جاتی ہے. انسان اگر چاہے تو اپنے اعمال سے ان بلندیوں کو چھو لیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے. جس طرح سے ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں اور اس میں بیج بو دیتے ہیں, لیکن اس سے جو پھل ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف ملتا ہے اور اس پھل کا ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اعمال میں ایسی بلندی تک جا پہنچتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچے. اور انسانی اعمال میں جس چیز کو ایک بنیادی دخل حاصل ہے, خوف خدا اور خدا ترسی کے بعد سب سے اہم ترین جو چیز ہے انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اس کا صبر ہے. جب ہم صبر کرتے ہیں مختلف چیزوں پر, مختلف مصائب پر, مختلف حوادث پر, رنج و الم میں صبر کرتے ہیں, اس سے انسان کا بگڑتا کچھ نہیں, بنتا سب کچھ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح زمین پر بے پناہ بارشیں بھی ہوتی, طوفانی بارشیں, دریا اور سمندر کے طوفان بھی آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, لیکن زمین اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے, اس کا کچھ بگڑتا نہیں کہ وہ اسے بڑے استقلال کے ساتھ سہ جاتی ہے زمین, اس کا بگڑتا کچھ نہیں. جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, جو قدرتی جنگلات ہیں, اور گرمی جب شدت کی ہوتی ہے تو جنگلات میں آگ لگتی ہے. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس آگ سے یہ جنگل تباہ ہو گیا, لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جن جنگلات میں آگ لگتی ہے اور وہ جنگل جل جاتے ہیں, تو اس کی راکھ سے جو نیا جنگل جنم لیتا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ سرسبز و شاداب اور گھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں, غم میں مبتلا ہوتا ہے, حالات اس کے لیے دشوار ہوتے ہیں, تو ہر مشکل میں سے جب انسان نکلتا ہے صبر کر کے, تو پہلے سے کہیں زیادہ وہ دانشور ہوتا ہے, اس میں بصیرت بڑھتی ہے اور اس کی بعد کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرتا رہے. یہ کسی ساتھ میں چونکہ پرسنل چیز لکھی ہوئی, اس کو میں پڑھوں گا نہیں. آنے والی کتابوں کے کچھ نام سجیسٹ کیے ہیں, میں ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. دعا کا انہوں نے مجھ سے کہا ہے تو میں دعا یقینی طور پہ کر دوں گا. کسی صاحب نے بہت ہی عمدہ سوال ہے کسی کا, ابن عربی صاحب نے اپنی کتاب روحانی افکار میں تحریر کیا ہے, उस तक सफर, उसमें सफर, उससे सफर, इसकी वजाहत के लिए मुझे कहा है। मैं बशर्ते जिंदगी अगली इतवार इसी पर इसी का जिक्र करेंगे। असल में इब्ने अरबी साहब ऐसे बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे हैं कि इन्होंने जिस जिस सब्जेक्ट पर भी कलम उठाई है नए नुक्ते पैदा किए हैं। इनके उपकार बहुत ही खूबसूरत और तहकीक का पहलू लिए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी और भी जो इनके वर्क्स हैं वो कमाल के हैं। तो कोशिश करेंगे कि इब्ने अरबी साहब के वर्क्स के सिलसिले में कुछ तफसीली गुफ्तगू हो सके यहाँ इंशाअल्लाह ताला कमिंग संडे बशर्ते जिंदगी इस पे जरूर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी किसी साहब का ज़ाती मामला है जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इसमें बैत के सिलसिले में मैं अर्ज कर देता हूँ कि बैत करना पहली तो बुनियादी चीज़ उसमें यह है कि वह आदमी दूसरे को बैत करे जो खुद को ही अच्छा हो, किसी मकाम पर पहुंचा हो, अक्ल दानिश में, इल्म में, रूहानियत में, फहम फरासत में एक मकाम रखता हो, तो वो दूसरों को बैत करे। मुझ जैसा इंसान जो गुनाहों में तो नाम पैदा कर सका लेकिन नेकी में, नेकी से बिल्कुल ही आरी है, वो किसी को बैत करके क्या करेगा, क्या देगा किसी को। और इसमें दूसरी चीज ये है कि बैत करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। यहां बैत के सिलसिले में जब गुफ्तगू हुई तो मैंने अर्ज किया था कि बैत वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक होती है। जिस तरह बैत करने वाला मुआहदा साइन करता है जुबानी कि मैंने अपने आप को इन साहब के हाथ फरोख्त कर दिया जिनके हाथ पर मैं बैत कर रहा हूं, इसी तरह बैत लेने वाला शख्स ये जिम्मेदारी कबूल करता है कि वो जिनको बैत कर रहा है उन साहब की तरबियत करेगा, उनको इल्म सिखाएगा। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरी मसरूफियात इस किस्म की हैं कि मैं वक्त दे नहीं पाता, तो मैं बैत कर लूं आपको, आपकी ना तरबियत हो सकेगी ना आपको कोई इल्म हासिल हो सकेगा, तो उसका फायदा क्या है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आ जाए, सलूक सबके साथ यकसां होता है, जो कुछ है वो सबके लिए अवेलेबल है। किसी ने बैत की है, किसी ने बैत नहीं की है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, खैरखा है, बदखा है, कहीं किसी के साथ कोई तफरीक नहीं है, तो जो कुछ है वो अवेलेबल है। क्योंकि यही वो टाइम है जो मैं लोगों के लिए मखसूस किए हुए हूँ, खल्के खुदा के लिए। तो कोई भी आ जाए तो बैत करके आप अपने आप को बांधना क्यों चाहते हैं, पाबंद क्यों करना चाहते हैं, जबकि अपने आप को आजाद रखते हुए भी आपको वही कुछ मिल जाएगा जो बैत के बाद मिलना है। तो आजाद रहिए और लुत्फ लीजिए। किसी साहब ने पूछा है कि अगर मुर्शिद के हवाले से कोई मुरीद के सामने नेगेटिव कमेंट पास कर दे तो मुरीद को रिएक्ट करना, मुरीद रिएक्ट करे या नहीं, और अगर करे तो कैसे। इन्फेंट्री रोड पर एक साहब आराम फरमा रहे हैं आजकल, अशफाक साहब, मुन्नू भाई, हनीफ रामे, इस तरह के और बहुत से लोग उन्हीं के मुरीद हैं। उनका नाम, असल तो नाम था फजल हुसैन शाह साहब, लेकिन बाबा नूर वाले कहलाते थे वो। मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई भी है। अशफाक साहब एक बार बता रहे थे कि एक नौजवान आया जो खासी बदतमीजी कर रहा था फजल शाह साहब के साथ, तो मुन्नू भाई उसको मारने के लिए उठे तो फजल शाह साहब ने उनको, मुन्नू भाई से कहा कि बैठ जाओ, रोजाना इतने लोग आते हैं जो आके मेरी तारीफ करते हैं, उनको तो तुम मारने के लिए कभी नहीं उठे, और अगर एक आदमी आया है जो बदतमीजी कर रहा है तो उसको क्यों मारते हो। मेरे नज़दीक तो ये है कि हर शख्स को अपनी राय कायम करने का हक है। बकौल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि इन्हें इनकी माँ ने आज़ाद जना है तो तुम इन्हें ग़ुलाम कैसे बना सकते हो। लोग आज़ाद पैदा हुए हैं, उनका यह हक है कि जिसको जैसा समझें वैसी उसके बारे में राय कायम करें। जब उन्हें राय कायम करने का हक है तो उस राय के इजहार का भी उन्हें हक है। तो अगर कोई साहब बदतरीन राय कायम करते हैं किसी के बारे में तो उन्हें इसका हक है कि उसका इजहार कर दें, और उस बदतरीन राय को, उस बदतरीन कमेंट्स को बड़े सुकून और हौसले से सुना जाना चाहिए। ये तो एक जनरल लाइफ की बात मैं कर रहा था, लेकिन मुर्शिद के बारे में अगर कोई कमेंट करता है तो उसका आसान तरीन तरीका मेरे ख्याल में यह है कि इंसान उसे रिक्वेस्ट कर दे बहुत पोलाइटली कि साहब मेरे मुर्शिद हैं, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन अपनी इस राय का मेरे सामने इजहार न कीजिए कि मेरी दिल आजारी होती है, मामला ठीक हो जाएगा। जाली पीरों और मौलवी हजरात ने सोफिया की इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये फरमाइए कि कैसे साबित करें कि अल्लाह ताला चंद लोगों کو خاص علوم عطا فرماتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انگریزی کا ایک پروورب ہے، دی ٹیسٹ آف پڈنگ از ان ایٹنگ. یہ جو کہا گیا کہ دی ٹیسٹ آف پڈنگ از ان ایٹنگ، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں. جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ضرور ہوگی. تو جب چراغ جلتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے تو پھر اسے کوئی اندھیرا ثابت کر نہیں سکتا کہ یہ اندھیرا ہے. جو لوگ صوفیہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے وہ ان کا حق ہے، وہ حق انہیں دیجیے. رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ وہ حق کو ثابت کر دیتا ہے. صرف صبر اور وقت کی بات ہے. رب کو ہی ثابت کرنے دیجیے کہ کیا صحیح کیا غلط. انہیں صاحب کو سوال ہے کہ لوگ آپ کے پاس شادی بیاہ کاروبار دیگر امور کے معاملے میں مشورہ کرنے آتے ہیں، آپ کا جواب کیا استخارہ کے بعد ہوتا ہے؟ کیونکہ مولوی حضرات کہتے ہیں استخارہ کرو، اور خالی جگہ چھوڑ کے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس نہ جاؤ. دعا سے مشورہ میں دے دیتا ہوں. دعا کرنا، دعا کرانا دونوں ہی سنت ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے منع کرتا ہے. ہاں البتہ علماء جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ دعا کے علاوہ اور قسم کے علوم ہیں. دعا سے کوئی عالم منع نہیں کرے گا. میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب اپنے ذاتی معاملات یہاں نہ دیجیے. مجھے اس سے کوئی دکھ یا مجھے کوئی دقت نہیں ہے، نہ کوئی مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے. ذہنی طور پر شاید میری تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ میں ہر انسان کی پرائیویسی کا احترام بہت کرتا ہوں، غلط یا صحیح، لیکن بہرحال یہ عادت ایک ڈیولپ ہو گئی بھی ہے کہ ہر شخص کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہوں. اور حت الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان پر نہ آنے پائے جس سے اس کی ذات کے بارے میں کچھ تاثر بندھے. یہ جو اس قسم کے سوالات اب دے دیتے ہیں، ان کا جواب دینا خود آپ کے مفاد میں نہیں پبلکلی، یا آپ مجھے علیحدگی میں ایسے سوال دے دیجئے، میں اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا. तो मैं खुद आपके मफाद में ये बात कर रहा हूं, कि वरना मेरे लिए तो आसान है, बजाय इसके कि आप अलहदगी में मेरा वक्त लें मुझसे, मैं ये पब्लिकली जवाब दे सकता हूं। लेकिन मेरे नज़दीक ये इंसानियत की तौहीन है कि किसी की प्राइवेसी इस तरह से मजरू कर दी जाए। किसी धाम में फरमाया कि रिज्क की तंगी की वजह मियां या बीवी किसी एक की वजह से होती है। कहती हैं कि रिज्क औरत की किस्मत का होता है, क्या ऐसा ही है? क्योंकि इस बारे में हदीस भी कोट की जाती है कि एक शख्स ने आपसे रिज्क की तंगी की शिकायत की, तो आपने दूसरी शादी को फरमाया। अगर ये ऐसा ही है तो फिर जिस वजह से भी ऐसा है उसे दूसरे की जिंदगी बनाने की बजाय क्या लेट गो नहीं कर देना चाहिए? मैं इसका जवाब अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर बीवी यही महसूस करे कि इस शौहर की वजह से रिस्क की तंगी है, तो फिर वो क्यों ना तलाक दे दे शौहर को? ज्यादती है। बात यह है कि बहुत से शौहर आपको ऐसे मिल जाएंगे, और शायद मैं उनमें सिर्फ फहरिस्त हूं, जिनके करतूत की वजह से घर में रिस्क की तंगी रहती है, तो उसका क्या करेंगे? बीवी पर तो इल्जाम दे दिया बड़ी आसानी के साथ, लेकिन अपने बारे में क्या करूंगा मैं? ये सही है कि रिस्क हर इंसान की तकदीर का लिखा ही उसे मिलता है, तो अब अगर एक शादी हुई और बीवी ऐसी मिल गई जिसकी तकदीर में रिस्क वाफिर नहीं लिखा, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, उसके बाद क्या होगा? तो या तो कुछ ऐसा आला इजाद किया जाए कि शादी करने से पहले उस बच्ची के माथे पर उस आले को रखकर रीड कर लिया जाए इसकी तकदीर में रिस्क कितना लिखा है, तो फिर शादी कर ली जाए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का किस्सा आपने लिखा है, बात यह है कि वो ये नहीं है कि रिज्क की फरावानी या रिज्क की तंगी बीवी की वजह से होती है। उसका मकसद ये था जो मैंने अभी अर्ज किया कि हर शख्स की तकदीर में उसका रिज्क लिखा है। कुछ लोगों की तकदीर में रिस्क बहुत वाफिर है, कुछ की उतना वाफिर नहीं है, तो और फिर एक की बजाय दो हो गए तो रिस्क उसी हिसाब से रब ताला देगा, दो की बजाय जब तीन हो गए तो रिस्क उसी हिसाब से आएगा। फिर जो जो अफराद बढ़ेंगे रिस्क उसी हिसाब से आएगा। उसके पीछे फिलॉसफी ये है, उसका मकसद ये नहीं है कि जिस शख्स की तकदीर में वाफिर रिस्क नहीं है उसे घर से निकाल दिया जाए। इसका दूसरा तरीका ये है कि रब ताला के हजूर दुआ की जाए कि या अल्लाह हम पर रिस्क वसी कर दे। ये हम कभी नहीं कहते, आप कभी देखिए दुआ मांगते हुए लोगों को रिस्क के बारे में, ये तो दुआ मैं मांगता हूं कि या अल्लाह मुझे तरक्की दे दे, या अल्लाह मुझे ट्रांसफर कर दे, या अल्लाह इस पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर मुझे ले जाओ। या ये दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। तनख्वाह ये रोज आप भी देखते होंगे, मेरी मुशाहदे में भी आती है बात कि हमने तरक्की की दुआ की, तरक्की हो गई, तनख्वाह दुगनी तिगनी हो गई, लेकिन तंगदस्ती पहले से बढ़ गई। ये अक्सर होता है। तनख्वाह के बढ़ने की दुआ की, परवरदिगार ने कबूल फरमा ली, तनख्वाह बढ़ गई, तंगदस्ती मजीद हो गई, रिज़्क़ की तंगी आ गई। उसकी वजह यह है कि हम जब रब को यह सजेस्ट करते हैं कि तो वो कर जो हम चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली हम जब उसको कहते हैं हमारी तरक्की कर दे, तो हम रब को यह सजेस्ट कर रहे होते हैं कि तू हमारे लिए यह कर दे, जबकि सबसे बेहतर जानने वाला रब है, वो आलमुल गैब है, उसको ये बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उसके फैसले हमारे हक में बेहतरीन हैं, लेकिन सजेस्ट हम करते हैं। इसी तरह बच्चे बच्ची की शादी के सिलसिले में, या अल्लाह इस जगह मेरे बेटे की शादी कर दे, वो शादी हो जाती है, उसके बाद फिर मुश्किलात का दौर शुरू हो जाता है। तो अगर इसकी बजाय हम रब ताला से ये कह दें कि या अल्लाह तुम मुझ पर रिस्क वसी कर दे, या परवरदिगार तुम मुझे इस जहां में भी और अगले जहां में भी बाइज्जत कर दे, मसला हल हो गया। इन इस दुआ के बाद किसी और दुआ की जरूरत रहती नहीं है, लेकिन ये दुआ हम नहीं मांगते तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। एक और अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह तुम मुझको इतना वसी रिस्क अता फरमा दे कि मेरी जायज जरूरतें पूरी होकर बच रहे और उससे मैं तेरे बंदों की खिदमत किया करूं, बरकत आ जाएगी। वही तनख्वाह जिसमें तंगदस्ती, वही आमदनी जिसमें तंगदस्ती है, उस पर ऐसी फराखी आती है कि इंसान सोचता रह जाता है कि पैसे खत्म ही नहीं होते। तो जब हम रब ताला से ये अर्ज करते हैं कि सब इज्जतें तेरे ही लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सब इज्जतें तेरे ही लिए हैं, लेकिन जिसे तू चाहता है इज्जत अता फरमाता है, तू मुझे इस जहां में भी और अगले जहां में भी बाइज्जत कर दे, फिर एक खुला मैदान पड़ा है कि रब ताला जहां से जिस तरह की चाहे इज्जत अता फरमा दे। दुआ मांगते वक्त अगर हम अपने अल्फाज को थोड़ा सा क्लेवरली फ्रेज कर लें अपनी इस दुआ को, तो मुश्किलात से बच जाएंगे। तो बीवी पर बरहम होने की बजाय कि उसकी वजह से रिस्क तंग हो गया, हम अपनी दुआ को अगर दुरुस्त कर लें तो मसला हल हो जाता है। अगर बीवी ही पे ही आपका शक है कि उसकी वजह से रिस्क कम हो रहा है, तो निकाह के वक्त अल्लाह से ये दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए ये निकाह कर रहा हूं, तू मेरी मनकूहा को मेरे लिए बाबरकत कर दे। ये दुआ भी की जा सकती है। किसी साहब ने लिखा हुआ है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि आंखें अंधी नहीं हुआ करती, बल्कि सीने में जो दिल है वो अंधे हो जाया करते हैं। तो इससे मुराद दिल है या रूह जो दिल में है? क्या इंसान की सोच का ताल्लुक भी दिल से है? इस मौजू पर मेरा ख्याल है काफी गुफ्तगू हुई भी है। आप अगर यहाँ साबिर साहब से या टीपू साहब से फरमा देंगे तो वो आपको लेक्चर नंबर बता देंगे, उसकी सीरीज भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि इन सब बातों को मैं अगर दोहराऊंगा तो सबका वक्त ज़ाया होता है। ले लीजिए, अगर उसके बावजूद उसमें कुछ आपको क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो आप मुझे फरमा दें, मैं ज़रूर इस सिलसिले में अर्ज कर दूंगा। एक सवाल के कुछ मगरबी सोच के हामिल आला तालीम याफ्ता अफराद मुलाइज्म की वजह से इस्लाम से बेजार दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को इस्लाम की असल रूह से शनासा करने के लिए कुछ ऐसे औलिया अल्लाह ड्यूटी पर दिखाई देते हैं जिनका जाहिर एक आध वजह से शरीयत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा होता। क्या फील्ड से रिलेटेड औलिया अल्लाह को अपनी ड्यूटी बेहतरीन अंदाज में पूरी करने के लिए सेक्रेटेरिएट से कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं? पहली बात तो ये है कि साहब, ये कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी कि हम इस टर्म को प्रमोट करें, मुल्लाइज्म की टर्म को। ये खासी डेरोगेटरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग जिस मौलवी का हकारत से जिक्र करते हैं जो ड्यूटी मौलवी साहब सर अंजाम देते हैं, वो मैं और आप कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता। इनके पास जितना इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया है वो उसको फैलाते हैं खल्क खुदा में। एक बहुत ही एग्जिक्टिंग ड्यूटी उन्होंने अपने जिम्मे लिए होती है, जिसको मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी उस सही रूह के साथ पूरी कर सकता हो जिससे मौलवी करता है। आप किसी मौलवी साहब को जंगल में किसी पहाड़ की चोटी पर पैराशूट के जरिए उतार दीजिए, जहां 100-100 मील दूर तक किसी जानदार का नाम निशान ना हो, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सही टाइम पर उस वीराने में भी आजान देकर नमाज अदा फरमाएंगे। यही एक काम इस चीज का मुतकाजी है कि उनका एहतराम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता। तो किसी की खिदमात को सराहा जाना चाहिए, ना कि सरकास्टिक के लिए उसका जिक्र किया जाए। ये ज्यादती है। बाकी रह गई ये बात कि औलिया अल्लाह ड्यूटी पर فائز ہوتی ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کسی شخص کی ہم ظاہری اور مخفی زندگی پر ہر وقت نظر رکھ سکیں. نہ معلوم کہ وہ شخص تنہائی میں کیا کرتا ہے. تو کسی پر گمان کرنا بعض کا شرمندگی کا باعث ہمارے لیے بن جائے گا کہ وہ اندر سے کیا نکلے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. تو ہم کسی کے ظاہر سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس کا فیصلہ رب پر رہنے دیں کہ رب اس آدمی کو کیا سمجھ کر کیا انعام دے رہا ہے یا ادر وے راؤنڈ. یہ رب کا فیصلہ ہے, ججمنٹ رب کے پاس ہے. یہ بہت دشوار کام ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. چند موٹی موٹی چیزیں تو ہم ظاہر باہر سے دیکھ لیں گے کہ وہ کوئی شخص نماز وقت پر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا, کسی کا حق تو نہیں مارتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیزیں رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند فرمائی ہیں, جس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں انلیس کہ دوسرا شخص معاف نہ کر دے, ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. یتیم کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی بڑی شدت سے, دوسرے کا حق مارنے سے منع کیا گیا ہے بہت شدت کے ساتھ, کم تولنے سے منع کیا گیا, اس بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہماری نظر اس پر نہیں ہے. ہم چند ظاہر چیزوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں جبکہ رب کے معاملات معلوم نہیں کیا ہیں, وہ مجھے تو نہیں پتا. وہ میرا خیال ہے کسی انسان کو پتا نہیں چلے گا کہ رب تعالیٰ کس طرح سے پرکھتا ہے انسان کے اعمال کو, انسان کو کیسے پرکھتا ہے, وہ کن باتوں پر انعام عطا کر دیتا ہے. اس لیے ان قصوں میں اگر ہم نہ پڑھیں تو بہتر رہ جائے گا اور ہم بھٹکیں گے نہیں اس سے. باقی رہ گئی ریلیکسیشنز کی بات, تو ایک بات یاد رکھیے, شریعت میں کوئی آدمی کسی مقام پر چونکہ فائز ہوا وہ ہو, شریعت میں ریلیکسیشن نہیں دے سکتا. نماز کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی, حالانکہ رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کوئی ہو نہیں سکتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں بھی نماز کی معافی نہیں ہوئی, روزے کی معافی نہیں ہوئی, شریعت میں ریلیکسیشن نہیں ہے. تو یہ جس کو آپ نے سیکرٹریٹ کا نام دیا, وہاں سے ریلیکسیشن کیا مل جائے گی کسی کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شریعت میں کوئی ریلیکسیشن دے سکے وہ نہیں ممکن. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی اتوار آپ سے بشرطے زندگی ملاقات ہوتی ہے, اور جناب محمد ابن عربی صاحب کی تصنیفات پہ پھر بات کرتے ہیں.